जी
जी सर, क्या कान कटे जानवर की कुर्बानी जायज़ है?
जी कान कटा जो जानवर है उसमें हमने ये देखना है कि उसका कान किसी ऐब की वजह से कटा हुआ है, या बाज़ुकात ये होता है कि जैसे हम बकरा मंडी में गए तो वहाँ अफ़गानिस्तान से वो काफ़ी सारे जानवर लेके आए, तो वो निशानी के लिए जो है ना वो कान को चीरा दे देते हैं। अगर निशानी के लिए उन्होंने कान को चीरा दिया हुआ है तो फिर आप उनको समझाएं, ठीक है, कि भाई ये काम ठीक नहीं है, क्योंकि निशानी के लिए कान को चीरा देना ये उसमें ऐब नहीं है। हाँ, अगर कान उसका आधा कटा हुआ है तो ये ऐबदार जानवर है, ठीक है, तो ऐबदार जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। लेकिन अगर निशानी के लिए उसने कान काटा है तो वहाँ लोगों को एजुकेट करना चाहिए, ऐसे जानवर की अगर आपने कुर्बानी दे दी है तो वो कुर्बानी जायज़ है।
सर, क्या सींग टूटे जानवर की कुर्बानी जायज़ है?
देखिए, जो जिस जानवर का सींग टूट गया हो तो बहरहाल ये कोई बड़ा ऐब नहीं है, ऐब तो है, हम यही कहेंगे कि आप उस जानवर की कुर्बानी करें कि जिसके सींग जो हैं वो बड़े हैं या फिर उसके सींग जो है वो खूबसूरत हैं। आप सल्लम भी ऐसे जानवर की कुर्बानी करते थे जो बड़े सींगों वाला होता था, क्योंकि दिखने में खूबसूरत लगता है। बाद पहाड़ी बकरे आप देखें ना, उनके सींग बड़े खूबसूरत होते हैं, वो जालीदार होते हैं, ठीक है, बल खा रहे होते हैं। तो अगर किसी जानवर का सींग टूट गया है तो बहरहाल उसकी कुर्बानी जायज़ है, क्योंकि ये कोई ऐसा ऐब नहीं है कि जिसकी वजह से आप यूँ कहें कि जी वो ऐसा ऐबदार हो गया है कि उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। बाद लोग यूँ भी करते हैं कि उसके दोनों सींग जो है ना वो बराबर कर देते हैं। क्यों बराबर कर देते हैं? वो ये कहते हैं कि जी ये जानवर एग्रेसिव है, मतलब दूसरों को जो है वो सींगों से मारता है, हमारे दूसरे जानवरों को ज़ख्मी कर देता है, तो बाद उसके एग्रेशन से बचने के लिए भी ऐसा करते हैं। तो सींगों वाले जानवर की कुर्बानी बिल्कुल बेहतर है, प्रेफर्ड है, मुस्तहब है, रिकमेंडेड है। जिसके दोनों सींग उन्होंने बराबर कर दिए उसके एग्रेशन की वजह से, वो भी कुर्बानी में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, जिसका सींग टूट गया है तो उसमें बेहतर नहीं है, मतलब रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर कर दे तो कोई हर्ज भी नहीं है।
जानवर को सर चोट लग जाए तो कुर्बानी जाए उसकी?
हाँ, जानवर आपने कुर्बानी का जानवर आपने ख़रीदा, अब जारी बात है उसको जो है वो आपने किसी डाले के अंदर डालना है, किसी सुजुकी में पिकअप में डालना है, घर लेके आना है। बाज़ औक़ात वो जानवर बड़ा होता है, उसको गाड़ी में चढ़ाते हुए नीचे उतारते वक्त उसको कोई ज़ख़म लग जाता है, तो मामूली सा ज़ख़म चोट लग जाए या घर में आने के बाद लग जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी कुर्बानी जायज़ है, अलाउड है, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। हाँ, अगर किसी की जानवर की जो है वो आप कह लें कि जी इतना ऐबदार हो गया, कोई ऐसी चोट उसको लगी है जैसे वो लंगड़ा ही हो गया, तो अब जाहिर बात है कि वो मुनासिब नहीं है। लेकिन ये भी उस वक़्त है कि जब अभी आपने उसको ख़रीदा नहीं था, ठीक है, तो उस वक़्त फिर उस जानवर को ख़रीद के जो है वो कुर्बानी करना वो मुनासिब नहीं होगा। लेकिन छोटी मोटी अगर किसी जानवर को मंडी में भी बाज़ुकात इतने जानवर हैं बिक रहे हैं, चोट लग जाती है, तो उसके ख़रीदो फरोख्त में कोई हर्ज नहीं है, उसकी कुर्बानी में भी कोई हर्ज नहीं है।
क्या खसी जानवर की कुर्बानी जायज़ होगी?
हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दो मेंढों की कुर्बानी की कि दो के खसी थे, तो खसी जानवर की जो है वो कुर्बानी जायज़ है।
दरअसल किस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है?
देखिए, उसमें ऐसा जानवर जिसके अंदर कोई बड़ा ऐब हो, तो हदीसों में चार किस्म के अल्फाज आए हैं, ये बहुत अहम है। जैसे ये रवायत हमारे सामने है कि आप सल्लम फरमाए अरजा, अरजा कहते हैं उस जानवर को कि जिसका लंगड़ापन जो है वो वाजे हो, यानी लंगड़ा जानवर, ठीक है, लंगड़ा के चलता हो। दूसरा जो लफज आया है वो क्या है, औरा, औरा कहते हैं उस जानवर को जो कि काना है, ठीक है, मतलब उसकी आँख जो है वो ऐबदार है, ठीक है। और तीसरा जो लफ्ज़ आया वो है मरीज़ा, यानी मरीज जानवर की कुर्बानी, आप सलम फरमाए कि ये भी नहीं करनी। और चौथा जो लफ्ज़ है वो है अजफा, अजफा कहते हैं उस जानवर को कि जो इतना कमज़ोर हो, नहीफ हो, कि उसकी हड्डियों में गूदा भी ना हो। तो कमज़ोर और नहीफ जानवर, बहुत लागर या बीमार जानवर, ख़ारिश की बीमारी है या और कोई उसको बीमारी है, या इसी तरह से जो लंगड़ा है या फिर जो काना है, तो ऐब ऐसा हो कि जिसकी वजह से वो जानवर ऐबदार मालूम हो, कोई बड़ा ऐब, जैसे हम इसके अलावा भी हो सकता है, तो वो बड़ा ऐब अगर हो तो उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। छोटा मोटा हमने कहा जैसे कोई चोट लग गई, कोई उससे कोई जो है ना वो फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कोई छोटा मोटा सींग टूट गया तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। जी,
भैंस की कुर्बानी के मुतल्लिक क्या ख्याल है?
देखिए, भैंस की कुर्बानी जो है ना, इसके बारे में इख्तलाफ है। बाज़ अहले इल्म इसके जवाज़ के कायल हैं, जो इसके जवाज़ के कायल हैं ना वो ये कहते हैं कि ये बकरा की जिन्स में से है। बकरा, बकरा वो जो अरबी का लफ्ज़ है, वो उर्दू वाला नहीं, यानी ये गाय की जिन्स में से है, ठीक है। तो बाज़ अहले इल्म ने भैंस को गाय के ऊपर कियास किया है, क्योंकि कुरान में जिन जानवरों की कुर्बानी का जिक्र है वो चार ही हैं, ऊँट, ठीक है, ऊँट और ऊँटनी, भेड़ और दुम्बा, बकरा और बकरी, और इसी तरह से गाय और बैल। तो गाय के साथ अरब में चूँकि भैंस नहीं थी, तो बाज़ अहले इल्म ने जो है वो भैंस को भी गाय के हुक्म में रखा है कि ये भी गाय की बहन है, वो यूँ कह देते। तो इसलिए वो कहते हैं जी भैंस की कुर्बानी जायज़ है। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि नहीं, भैंस एक अलहदा जिन्स है, भैंस की कुर्बानी का जिक्र हमें रवायतों में नहीं मिलता, और ये बात ठीक है क्योंकि अरब में भैंस आम नहीं थी तो वहाँ कुर्बानी का जिक्र नहीं मिलता। तो बाज़ अहले इल्म कहते हैं इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। बहरहाल मेरा मौक़िफ़ यह है कि इज्तनाब करना बेहतर है, क्योंकि एक डाउट वाली चीज़ है, शुबे वाली चीज़ है। जिस चीज़ के बारे में इत्तेफाक है उसकी तरफ जाना चाहिए, मतलब गाय ख़त्म तो नहीं ना हो गई, बैल मौजूद है, गाय मौजूद है, उसकी कुर्बानी करें। हाँ, अगर कहीं नहीं है तो फिर एक मसला पैदा होता है कि जी चलें आप भैंस की कर सकते हैं कि नहीं, जब वो मौजूद है तो उसकी कुर्बानी करें जिसके बारे में कोई शक नहीं। जी,
कुर्बानी के जानवर के दोंदा होने से क्या मुराद होगी?
हाँ, ये हदीस में अल्फाज आते हैं कि वला तस्बहु इल्ला मुसिन्ना, कि मुसिन्ना जो है ना उसको तुम ज़िबा करो। यानी कुर्बानी के जानवर के लिए ये शर्त है कि वो दोंदा होना चाहिए। दोंदे से मुराद ये है कि ये सामने के जो दो दांत होते हैं ना जानवर के, ये गिर के इसकी जगह दो नए दांत आ जाते हैं, इसको दोंदा कहते हैं। तो जो बकरा और बकरी है ना, एक साल बाद आम तौर पे उसके दो दांत गिर के जो है वो नए दो दांत आ जाते हैं, और गाय में जो है ये दो साल बाद आते हैं, गाय बैल वगैरह में, और ऊँट में ये पाँच साल बाद आते हैं। तो इसलिए जो है वो कहा जाता है कि जी दोंदा जो है वो जानवर होना चाहिए। यानी उसके जैसे हमारे बच्चों के दूध के दांत होते हैं, गिर जाते हैं, नए आ जाते हैं, तो समझ लें कि उनके ये दूध के दांत होते हैं जो गिर के नए आ जाते हैं, और वो अमूमन छोटे जानवर में एक साल में, और गाय वगैरह में दो साल में, और ऊँट में पाँच साल में आ जाते हैं। तो ये शर्त है बाहर। हाँ, भेड़ में आप सलम ने इजाज़त दी कि भेड़ जो है ना वो जो दुम्बा है वो छः माह का भी हो, जिसे जज़ा कहते हैं, वो भी आप मतलब कुर्बानी उसकी कर सकते हैं। बाकी जानवरों में उसका दोंदा होना शर्त है, यानी एक साल कम अज़ कम हो बकरा बकरी, और गाय जो है वो दो साल, और ऊँट पाँच साल।
भेड़ और दुम्बे में दोंदा होने की शर्त?
वो भेड़ और दुम्बे में तो यही है ना कि एक साल ही है, एक साल ही है, लेकिन उसमें इजाज़त दे दी गई कि वो छः माह का भी हो तो आप उसमें कुर्बानी कर सकते हैं।
गाय और ऊँट में सर कितने हिस्से जायज़ हैं?
गाय और ऊँट में जो है वो सात हिस्से जायज़ हैं, बल्कि बाज़ रवायतों में ये भी आता है कि ऊँट में दस हिस्से भी जायज़ हैं। ठीक है जी,
ऊँट को सर ज़िबा करने का सुन्नत तरीका क्या है?
हाँ, ऊँट को ज़िबा करने का जो तरीका हमें मिलता है रवायतों में वो नहर है। उसके लिए लफ्ज़ क्या है? नहर। नहर कहते हैं कि जी आपने ऊँट को खड़ा करना है और उसकी बाईं टांग जो है वो आपने बांध देनी है, बाईं टांग बांध के फिर आपने कट लगाना है। ठीक है, उसकी शहरक पे आपने कट लगाना है, यानी ऊँट खड़ा है, ठीक, और कट लगा के फिर उसका खून बहेगा, फिर वो नीचे गिरेगा, फिर आपने उसको जो है वो ज़िबा करना है, इसको नहर करना कहते हैं। आम जानवर को आप लिटा के ज़िबा करते हैं, और ऊँट को आप खड़ा करके जो है वो उसका बायां पांव बांध के उसको आप नहर कहते हैं। ये मुस्तहब है, यानी रिकमेंडेड है, सुन्नत तरीका है। आप सल्लम ने हजरतुल वदा के मौका पे रवायतों में आता है 63 ऊंट आप सल्लम ने अपने हाथ से नहर किए, फिर बकिया जो है वो 100 ऊंट से बकिया हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने किए।
सर, कुर्बानी करना फ़र्ज़ है या सुन्नत?
कुर्बानी करना फ़र्ज़ है या सुन्नत, इस बारे में जो है वो फुकहा का इख्तलाफ है। तीन इमाम जो हैं, जैसे इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद, इनका मौक़िफ़ ही है कि कुर्बानी सुन्नत है, यानी सुन्नत मुअक्कदा है। अनाफ ये कहते हैं कि ये वाजिब है। ठीक है, तो इसमें दोनों तरह की रवायतें मिलती हैं। एक रवायत तो वो है कि जिसने कुर्बानी नहीं की तो वो हमारी ईदगाह में आके हमारे साथ नमाज ना पढ़े, तो अनाफ तो कहते हैं कि जी देखें यहाँ इतनी सख्त वईद है तो कुर्बानी लाजिम है। दूसरे कहते हैं कि नहीं, ये रवायत मरफू नहीं है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लम से साबित नहीं है, ये रवायत हज़रत अबू हुरैरा का फतवा है, तो इसलिए वो कहते हैं कि जी नहीं, ये फ़र्ज़ नहीं, ये सुन्नत है। क्यों? क्योंकि हज़रत शेखैन से मिलता है, हज़रत अबू बकर से, हज़रत उमर से, कि बाद सालों में वो कुर्बानी नहीं करते थे, और ये कहते थे कि हम इसलिए नहीं करते ताकि लोग इसको फ़र्ज़ ना समझ लें। तो सहाबा में से एक बड़ी तादाद ऐसे सहाबा की मिलती है जो कुर्बानी को फ़र्ज़ नहीं समझते थे, इसलिए तीन आइम्मा इस तरफ चले गए कि कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत है। अनाफ का मौक़िफ़ यह है कि कुर्बानी लाजिम है।
एक कुर्बानी तमाम घर वालों की तरफ से क्या किफ़ायत कर जाएगी?
जी, एक कुर्बानी जो है वो तमाम घर वालों की तरफ से किफ़ायत कर जाती है। इस बारे में हमें रवायात मिलती हैं, जैसा कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि वो ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लम के ज़माने में जो है हम क्या करते थे कि एक बकरी करते थे और पूरे घर वालों की तरफ से वो किफ़ायत कर जाती थी, और अब मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है वो इस मामले में फ़ख्र करना शुरू हो गए, हर बंदा घर के अंदर जो है वो अलग-अलग कुर्बानी कर रहा है। तो गोया वो इस तरफ तवज्जो दिला रहे थे कि लोग जो है वो अब मुबालगा करना शुरू हो गए, तो ये मुबालगा जो है वो ये दुरुस्त नहीं है, यानी शो ऑफ के लिए ऐसा ना करें। वैसे जितनी कुर्बानियाँ हों घर में, ज़्यादा हों तो बेहतर है, लेकिन एक अगर कुर्बानी कर ली जाए और बंदा बकियों की नियत कर ले सारे घर की, तो सारे घर की तरफ से हो जाती है, काफ़ी।
महंगा जानवर ज़िबा करने का क्या हुक्म है?
महंगा जानवर हमारे यहाँ अभी एक ट्रेंड चल पड़ा है कि लोग जो है ना वो 50 लाख की गाय, ठीक है, 60 लाख की गाय, ठीक है, इसी तरह से जो है वो 10 लाख का बकरा, 12 लाख का बकरा। देखिए, खूबसूरत जानवर ज़िबा करना ये तो हमारे दीन में मतलूब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन जानवर ज़िबा करते थे, ठीक है, मोटा पला, ताज़ा, खूबसूरत दिखने में अच्छे, उसके सींग हो, उसकी रंगत अच्छी हो, तो ये अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद है, ठीक है। लेकिन बहुत महंगे जानवर ज़िबा करना तो ये चीज़ पसंदीदा नहीं है, क्योंकि हमारे आम तौर पे अब मार्केट में ये ट्रेंड आ गया कि स्टीरॉइड दे के ना उसके ऊपर जो है वो मसनूई तौर पे चर्बी चढ़ाते हैं, और वो चर्बी जो है वो बाद में खाने के भी काबिल नहीं होती, ठीक है। यानी बाद में लोग जो है जब वो जानवर को ज़िबा करते हैं तो वो चर्बी वगैरह उनको कूड़े के ढेर पर जो है वो फेंकना पड़ती है। तो इसलिए ज़्यादा इस तरफ नहीं जाना चाहिए कि जहाँ फ़ख्र और रिया पैदा हो, शो ऑफ पैदा हो। मुनासिब सा खूबसूरत जानवर ले लेना तो ये मतलूब है, ये रिक्वायर्ड है जी।
तो सर, कुछ लोगों का ख्याल है कि कुर्बानी करने की बजाय कहीं वाटर कूलर वगैरह लगवा दिया जाए तो
ये। हाँ, अब ये हमारे यहाँ एक लिबरल तबका है जो कुर्बानी के हवाले से डिस्करेज करता है, और वो ये कहते हैं कि जी कुर्बानी करने की क्या ज़रूरत है, उससे बेहतर है कि किसी गरीब की ज़रूरत पूरी कर दें, उनको वाटर कूलर लगवा दें। देखें, असल में उनको समझाने की ज़रूरत है कि कुर्बानी में भी गरीब की ज़रूरत पूरी हो रही है। मिसाल के तौर पे जो कुर्बानी का जानवर बेचने के लिए मंडी में आ रहा है वो कौन है? वो अमीर है, गांव देहात से आ रहा है ना, वो गरीब है, ठीक है। फिर उसके बाद कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने के लिए आप जो कसाई बुलवा रहे हैं वो अमीर है, वो भी गरीब है। और इसी तरह से आप कुर्बानी करने के बाद जो गोश्त तकसीम कर रहे हैं तो गुरबा में भी तकसीम कर रहे हैं उसका 1/3। तो कितने लेवल्स हैं जहाँ पर गरीबों के लिए रोज़गार के मौके पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो कुर्बानी में भी वेलफेयर का काम हो रहा है। बाकी ये कि वाटर कूलर ज़रूर लगवाएं, और दिनों में लगवा लें, आपने ज़रूर उन दिनों में लगवाना है। तो आप उनको यूँ भी कह सकते हैं कि भाई जो आपने अपना आईफोन लेना है तो उससे बेहतर है कि आप वाटर कूलर लगवा लें, ठीक है। मतलब 14 प्रो मैक्स जो लेना है, ठीक है, उससे बेहतर है कि आप कुछ वाटर कूलर लगवा लें। तो ये बात इस तरह से कर लें, आप कुर्बानी के हवाले से ही आपने करनी है।
कुर्बानी के गोश्त के तकसीम के बारे में आप क्या कहते हैं?
देखिए, कुर्बानी के गोश्त के बारे में कुरान ने भी ये बात कही है, देखिए कुर्बानी के गोश्त के बारे में कुरान ने भी ये कहा है कि फ़कीर को भी दें, मिस्कीन को भी दें, और ख़ुद भी खाएं उसमें से। बाकी उसमें एक तकसीम जो हमारे यहाँ उलमा ने की है कि जी 1/3 जो है वो आप ख़ुद रख लें, 1/3 रिश्तेदारों में दे दें, 1/3 जो है वो आप गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर दें, तो ठीक है, इट्स ओके, काफ़ी है। लेकिन ये तकसीम कोई हदीस में नहीं आती, ये उलमा की तरफ से है कि 1/3 अपने लिए, 1/3 रिश्तेदारों के लिए, 1/3 जो। कुरान में सिर्फ इतनी बात है कि ख़ुद भी खाओ और फ़ुकरा और मसाकिनों को भी खिलाओ कुर्बानी में से, बस इतनी सी बात है। उसमें से आप आधा खुद रख लें, आधा उनमें तकसीम कर दें, वो रेशो कोई भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन बहरहाल एक बड़ा हिस्सा निकालना चाहिए और अच्छा हिस्सा अल्लाह के रास्ते में निकालना चाहिए।
कुर्बानी करने वाले का सर वो अशरा दिल हज्जा में बाल और नाखून वगैरह काटना, उसके मतलब क्या हुक्म है?
हाँ, ये रवायतों में हमें मिलता है कि जिस बंदे ने कुर्बानी का इरादा किया है और ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आ गया, ठीक है, तो अब 10वें दिन कुर्बानी होती है ना, 10 ज़िलहज्जा को ईद का दिन है, यौम नहर है, तो अब वो कुर्बानी के दिन कुर्बानी का जानवर ज़िबा होने तक अपने बाल भी ना काटे, अपने नाखून भी ना ले। ये रिकमेंडेड है, ये मुस्तहब है, इसके ऊपर सवाब मिलता है। बल्कि बाद रवायतों में ये भी है कि जो कुर्बानी नहीं कर सकता वो भी अगर ये काम करे तो उसे भी कुर्बानी का अजर और सवाब मिलेगा, यानी वो 10 दिन में अपने बाल ना ले और अपने नाखून वगैरह ना काटे।
सर, ईद के कितने दिन तक कुर्बानी करना जायज़ है?
देखिए, ईद के जो है वो इसमें इख्तलाफ है। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि जी एक तो ईद का दिन है यानी 10 ज़िलहज्जा, और उसके बाद 3 दिन हैं जिन्हें अय्याम तशरीक कहते हैं, यानी 11, 12, 13। गोया वो ये कहते हैं कि जी 4 दिन तक कुर्बानी जायज़ है, और बाद उलमा ये कहते हैं कि नहीं, 3 दिन तक कुर्बानी जायज़ है, यानी ईद का दिन और उसके बाद 2 दिन, ठीक है। तो हमारे आम तौर पर अनाफ का मौक़ चलता है, लेकिन अहले हदीस में से बाद अहले इल्म 4 दिन की कुर्बानी का भी फतवा देते हैं। दोनों तरह के मौक़ हमें सहाबा में भी इसके आसार वगैरह मिल जाते हैं, तो किसी भी मौक़ की तरफ आप चले जाएं तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, 3 दिन 4 दिन। बहरहाल दिन में कुर्बानी कर ले, रात में कुर्बानी कर ले। हमारे यहाँ ये भी होता है, लोगों के जहन में यह है कि जी जैसे दिन में कुर्बानी होती है रात के वक्त में नहीं हो सकती। नहीं, अगर 3 दिन जायज़ है तो 3 दिन का मतलब यह है कि दिन रात में किसी भी वक्त हो सकती है। तो रात को कसाई आमतौर पर अवेलेबल होता है, तो ठीक है, इंजॉय करें, बुलवाएं उसको, आराम से सुकून से कुर्बानी करें।
कुर्बानी के जानवर की खाल कसाई को उजरत में देना जायज़ है क्या?
नहीं, ये रवायतों में हमें मिलता है, वाज़े तौर पर मना किया गया है कि जो कुर्बानी के जानवर की जो खाल है वो कसाई को उजरत में ना दें, तो वो उसको सदका कर दें आप, जैसे लोग मदारिस वगैरह में दे देते हैं, ठीक है। हाँ, ये भी बाद रवायतों में मिलता है कि बाद सहाबा उसको अपने ज़ाती इस्तेमाल में ले आते थे, जैसे उसका कोई मशकीज़ा बना के घर में इस्तेमाल कर लिया, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। جی
رسم میت کے طرف سے قربانی جائز ہے یا جس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قربانی کر دیں اس کے متعلق آپ کا فرمانا؟
جی میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, چونکہ یہ ایک صدقہ ہے, نفلی صدقہ ہے, تو آپ قربانی کر سکتے ہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کے جانور ذبح کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یا اللہ میری طرف سے اور آل محمد کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے. اب امت میں وہ بھی لوگ تھے جو فوت ہو چکے تھے اور وہ بھی تھے جو کہ ابھی حیات تھے, تو اس طرح سے زندہ ہو یا جو لوگ فوت ہو چکے ہیں تو ان کی طرف سے قربانی کرنا اس میں کوئی حرج نہیں. اب دیکھیں, سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ آپ میت کی طرف سے حج کر سکتے ہیں, جب حج کر سکتے ہیں تو حج میں قربانی بھی تو کرتے ہیں, کوئی حرج والی بات نہیں, اس میں سختی نہیں ہے. ہاں, قربانی آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں, مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ ثواب میت کو پہنچ جائے اصل میں, تو اس اعلی ثواب کے لیے قربانی کرنا کوئی حرج نہیں.
قربانی کا جانور خود ذبح کرنے کا ثواب زیادہ ہے کیا؟
جی, یہ بات ہمیں روایتوں میں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سے قربانی کا جانور جو ہے وہ ذبح کرتے تھے. دیکھیں, اس کا بہت فرق پڑتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ جانور کو ذبح کریں گے تو جس جانور کا میں جو ہے وہ خون بہا رہا ہوں, تو گویا اپنے آپ کو آپ ریئلائز کروا رہے ہوتے ہیں نا کہ یا اللہ کبھی اگر میرے خون کی بھی ضرورت پڑی دین کو تو میں وہ بھی پیش کر دوں گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے, اور پھر یہ ہے کہ ہمیں بھی تھوڑی سی ہمت بھی پکڑنی چاہیے نا. اب سستی بہت زیادہ آ گئی, بزدلی بہت زیادہ آ گئی, جانور کا جو ہے وہ ذبح ہونا بھی ہم نہیں دیکھ پاتے, تو یہ نہیں ہے. تو مطلب یہ کام انسان کو خود سے کرنے چاہیے, اور عورت بھی جو ہے وہ اپنا قربانی کا جانور خود سے ذبح کر سکتی ہے. جی
سر, قربانی کا جانور ذبح کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ بتا رہے ہیں.
قربانی کے جانور ذبح کرنے کا سنت طریقہ یہی ہے کہ پہلے اس کو پانی وغیرہ پلوا لیں. ٹھیک ہے, اس کو پیاسا جو ہے وہ رکھ کے ذبح مت کریں, اس کی خوراک وغیرہ کا دھیان کریں. دوسرا یہ کہ اس کو لٹائیں, چھوٹا جانور ہے تو اس کو لٹائیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کی گردن کے اوپر اپنا دایاں پاؤں رکھتے تھے. ٹھیک ہے, دایاں پاؤں گردن پہ رکھا اور بائیں ہاتھ سے آپ نے اس کا منہ پکڑ لیا اور پھر دائیں ہاتھ سے آپ نے چھری چلائی. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی چھری تیز کر لو تاکہ اس کو راحت ہو. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کو ذبح کرتے ہوئے تکبیر پڑھنی ہے, بسم اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے, بس اتنا کافی ہے. اور باقی جسے ہم ذبح کرنا کہتے ہیں تو ذبح سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں, ذبح میں تین رگیں ہوتی ہیں, جانور کی تین رگیں ہوتی ہیں, ایک رگ اس کی کھانے کی, ایک خون کی اور ایک سانس کی. تینوں نالیاں کٹ جائیں, یعنی خون کی بھی, سانس کی بھی اور کھانے والی بھی, اس کو ہم ذبح کہتے ہیں. باقی اس کا منقع توڑنا ضروری نہیں ہے. بعض اوقات قصائی جلدی میں اس کا منقع توڑ دیتا ہے گردن کا, جس کی وجہ سے اس کا سارا خون نہیں نکل پاتا, وہ درست نہیں ہے. تو اچھے سے اس کا خون نکلنے دیں. تو یہ ذبح کا جو ہے وہ سنت طریقہ ہے.
سر, جو لوگ حج میں جاتے ہیں وہ ادھر بھی قربانی کرتے ہیں, تو کیا ان کا گھر میں قربانی کرنا ضروری ہے؟
ہاں, یہ اناف نے یہ بات کہی ہے کہ جو حاجی ہیں وہ وہاں پہ بھی قربانی کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ان کو قربانی کرنی چاہیے, کیونکہ وہ ان کی حج کی قربانی ہے اور ویسے بھی ان کے اوپر قربانی فرض ہے چونکہ صاحب نصاب ہیں, تو اس لیے وہ یہاں پہ بھی قربانی کریں گے. لیکن باقی ائمہ کے نزدیک قربانی ویسے ہی سنت موقع ہے, تو ان کے ہاں یہ موقف نہیں. تو اہل الحدیث کا بھی یہی موقف ہے کہ قربانی جو ہے وہ حاجی کے لیے یہاں پہ ضروری نہیں ہے.
کیا مکروہ شخص قربانی کر سکتا ہے؟
دیکھیں, مکروہ شخص جو ہے پسندیدہ تو اس کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلے وہ اپنا قرض اتارے, لیکن اگر اسے امید ہے کہ بھائی میرا قرض ایسا ہے کہ ابھی یہاں سے پیسے آنے اور میں نے اتار دینے ہیں, اگر اگلے کو کوئی جلدی بھی نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, وہ اگر قربانی کرنا چاہتا ہے اس حساب سے تو وہ قربانی کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
شیخ, ہم نے عام طور پہ سنا ہوتا ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ قبلہ رخ ہو کے اس کو لٹانا چاہیے, تو ابھی آپ نے جو سنت طریقہ بتایا اس میں یہ بات شامل نہیں تھی, تو یہ بات ہے یا
جی
نہیں؟
یہ بات ہمیں روایتوں میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹاتے تھے, تو ٹھیک ہے, قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹانا چاہیے.
اور اسی طرح جب اونٹ کو کی قربانی کر رہے ہیں تو اس کو بھی اس کا بھی منہ قبلہ رخ ہونا چاہیے؟
ہاں, بہتر یہ ہے کہ اونٹ کی قربانی کرتے وقت بھی اس کا منہ قبلہ رخ کر لیں. ٹھیک ہے, اگر وہ اس پہ راضی ہو تو. اگر راضی نہیں ہے تو پھر خواہ مخواہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کشتی نہ کریں. ٹھیک ہے, پھر پورا محلہ دیکھے گا, اونٹ آپ کے پیچھے ہوگا اور آپ آگے آگے ہوں گے.
شیخ, جو جب قربانی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی ویڈیوز بنانا اور پھر اس کو سوشل میڈیا وغیرہ پہ یا شیئر وغیرہ کرنا, اس کے بارے میں کیا ہے؟
دیکھیں, قربانی کے جانور کی ویڈیو بنانا اگر تو شو آف کے لیے ہو تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے. جیسے ہم نے بات کی تھی کہ بہت سارے لوگ کو بہت مہنگا جانور لے کے آتے ہیں, تو اب وہ پورے محلے میں گھماتے ہیں, پھر سوشل میڈیا کی اس کی تصویریں وائرل کرتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہم اتنا مہنگا بکرا لے کے آئے, بلکہ اس کے اوپر ویڈیوز بنتی ہیں, جی اتنا مہنگا جو ہے وہ بیل کس نے خریدا. تو اس میں مقصد صرف لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہم اتنا مہنگا جانور کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر رشو آف اور ریاکاری کے لیے ہو تو پھر تو درست نہیں ہے, لیکن اگر ویسی جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے ہو کہ جانور کیسے ذبح کرنا ہے, ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قربانی کے جانور کی ویڈیو بنا کے آپ ڈال سکتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب, غیر مسلم کے بارے میں کیا خیال ہے کہ انہیں قربانی کا گوشت دینا چاہیے یا نہ؟
جی, نان مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کے گھر میں میڈز وغیرہ ہوتی ہیں, کرسچینز ہیں, تو ان کو دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.